فرمایا حرمت علیکم، حرام کی گئیں تم پر. اب کچھ مزید پابندیوں کا تذکرہ ہے. تم پر کچھ چیزیں حرام کی گئیں. کیوں کی گئیں؟ اللہ کی مرضی. اس کو پتہ تھا یہ چیزیں تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہیں. کیا چیزیں تم پر حرام ہیں؟ اب یہاں آپ اس آیت کا ٹائٹل لکھ سکتے ہیں کہ پوری شریعت اسلامیہ میں جتنی چیزیں حرام ہیں نا، وہ اس ایک آیت میں آ رہی ہیں. آدم علیہ السلام پر ایک پھل حرام تھا نا، لا تقربا ہذہ الشجرۃ، وہاں ایک تھا. آج مسلمان کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں، کیا کریں نہ کریں، وہ اس ایک آیت میں آ رہا ہے. اس سے ہی آپ سمجھ لیں کہ یہ کتنی اہم آیت ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ المیتہ، مردار. میتہ کہتے ہیں اس جانور کو جو خود بخود مر جائے، ٹھیک ہے. اب اس کے آگے چار قسمیں آ رہی ہیں اسی آیت میں، وہ ہم پڑھ لیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ میتہ کہتے ہیں ایسا جانور جس کو اسلامی کلی ذبح نہ کیا جائے، ٹھیک ہے. میتہ ڈیڈ اینیمل کے معنوں میں، کوئی جانور خود ہی مر گیا یا اس کو اسلامی کلی سلاٹر نہ کیا گیا، یعنی اس کا خون بہانے کی بجائے اس کو ایسے ہی ذبح کر دیا. دوسری چیز لکھ لیں، لسٹ بنا لیں، پھر اس پہ کوئی بات رہ جائے گی تو الگ سے کر لیں گے انشاءاللہ. دوسری چیز جو منع ہے اسلام میں استعمال کرنی، وہ ہے ود دم، خون، بلڈ. اور سورہ النعام میں پڑھیں گے کہ دم مسفوحاً رننگ بلڈ. آج سائنس اس چیز کی تصدیق کرتی ہے کہ خون ہمارے جسم میں وہی کام کرتا ہے جو گٹر لائنیں کرتی ہیں ہمارے گھروں کے کچن میں. پانی گندا جاتا آتا، صاف آتا، کلین کرتے ہیں تو جو گٹر کی پائپس ہوتی ہیں نا، اس میں پانی صاف تو نہیں ہوگا نا. تو بلڈ جو ہے یہ اٹس اے کیریئر آف آل جرمس. ہمارے جسم میں ہر وقت سیل مرتے رہتے ہیں، ٹوٹتے ہیں ان کی لاشیں، یہ پس جو زخموں سے نکلتی ہے یہ وہی چیز ہوتی ہے. تو خون کے اندر یہ شامل ہوتی رہتی ہے. اسلام پاکیزگی سکھاتا ہے، اس نے ہمیں بلڈ پینا کھانا منع کر دیا. کون سا بلڈ؟ جو جسم کے اندر گندگی کو لے کے آ رہا ہوتا ہے. ذبح اسی لیے اسلامی کلی کیسے کیا جاتا ہے کہ ہلکا سا کٹ لگایا جاتا ہے، یہاں ایک رگ ہوتی ہے جو مین رگ ہے باڈی کی، اس کو تھوڑا سا کٹ لگا کے جانور کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر وہ جانور تڑپتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا مرسی کلنگ، بڑا رحم آ رہا ہے اس پہ، مار دو اس کو. نہیں، آگے بات کر لیں گے اس پہ بھی انشاءاللہ بعد میں، ٹاپک پورا ہو لے اگر اس کے بعد، کہ جانور جب وہ تڑپتا ہے نا، اس کے جسم سے وہ سارا گندا خون جو ہے نا وہ باہر نکل جاتا ہے. گندا خون ویسے بھی بھاری ہوتا ہے، وہ جلدی سے بہہ جاتا ہے. پھر جب اس کی پوری گردن کاٹ کے اس کو لٹکایا جاتا ہے، تھوڑا بہت خون جسم کے ساتھ جو گوشت کے ساتھ ہمارے گھروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ کلین ہوتا ہے، وہ پیور بلڈ ہوتا ہے. اسلام نے خون کو چونکہ حرام کیا کہ خون نہیں پی سکتے. آج بھی دنیا کے کئی ملک ایسے ہیں کہ لوگ خون پیتے ہیں ایز اے ڈرنک، دل کو بھی کچھ ہوتا ہے سوچ کے، لیکن اسلام نے کہا خون نہ پیو، خون حرام ہے. دو خون حلال ہیں، کون سے؟ جگر، کلیجی کھاتے ہیں نا جب وہ قربانی کا گوشت ہوتا ہے، اور تلی. یہ پورا بلڈ سے بنا ہوتا ہے. ہمارا جو لیور ہوتا ہے آپ دیکھیں، اس میں گوشت نہیں ہوتا نہ ہڈی ہوتی ہے، یہ جمع ہوا بلڈ. اور یہ کیوں حلال ہے؟ اس کی ریزن ہے کہ یہ تو ہمارے جسم کا فلٹریشن پلانٹ ہے، اس میں آ کے بلڈ تو پاک ہوتا ہے، تو وہ تو بلکہ بہت اچھا ہے. کسی کو خون کی کمی ہے تو وہی کھائے. بہرحال خون. اسی طرح دو میتہ بھی حلال ہے، دو مردار بھی حلال ہے. کون سے؟ مچھلی، سی فوڈ جس کو آپ کہیں گے، اور ٹڈی. ٹڈی یہ لابسٹر نہیں، کچھ اور ہوتا ہے. ٹڈیاں جو ہوتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ یہاں؟ نہیں، شریمس تو مچھلی ہوتی ہے، ایک اور ہوتا ہے اس کے لیے الگ، انگلش میں کچھ کہتے ہیں، میرے ذہن سے اس وقت جھٹک گیا. چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں. یہ دو چیزیں حلال ہیں. تیسری حرام چیز پہ چلیے، ولحم الخنزیر، پک کا گوشت، خنزیر کا گوشت، یہ نہیں کھا سکتے. کیوں نہیں کھا سکتے؟ پہلی بات اللہ کا حکم، دوسری بات یہ ہے کہ پک کے گوشت کے اندر اتنی گندگی ہوتی ہے. پہلی بات ہے کہ یہ وہ جانور ہے جو اپنی گندگی خود کھاتا ہے، جو اس کا فضلہ ہوتا ہے نا اس کو بعد میں خود کھا جاتا ہے، کچرا کھاتا ہے یہ. پھر جانوروں میں اس کی حیثیت جو ہے نا، صفائی کرنے والے جانور کی معروف ہے، جہاں گند دیکھتا جا کے کھا لیتا ہے. پھر اس جانور کے گوشت میں بو ہوتی ہے. آج جو پک کا گوشت کھاتے ہیں نا، اس کو پہلے کیمیکل سے ٹریٹ کرتے ہیں اور اس کی گندگی کو دور کرتے ہیں. फिर इस जानवर का जो गोश्त है ना, ये थोड़ी देर भी बाहर पड़ा रहे तो ये गल जाता है, ख़राब हो जाता है, यानी डर्टी ब्लड होता है इसका। पिग जो ना, इसके स्किन के अंदर पोर्स नहीं होते, ये जो मुसाम होते हैं ना जहाँ से पसीना निकलता है, तो उस पसीने की वजह से हमारे जिस्म का गंदे नमक वगैरह निकल जाते हैं, इसका वो पसीना सारा जिस्म के अंदर ही मिल जाता है। फिर इसके गोश्त पर चर्बी दूसरे जानवरों से ज़्यादा होती है, लार्ड बोलते हैं उसको, और भी कई नाम होंगे। फिर इसके अलावा एक और चीज़ है कि इस के गोश्त में कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो फौरन इंसान के जिस्म में इन्फ्यूज़ कर जाते हैं, यानी इंसान के जिस्म में इस तरह मिलते हैं कि अगर पिक को कोई बीमारी होगी ना, वो इंसान में भी आ जाएगी। इसका इनर अगर आप खोल के देखें कभी, जो इसका अंदर का जिस्म का ढांचा है वो और इंसान का बिल्कुल मिलता है। जैसे हमारा दिल है, इसका भी दिल, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आम सब जानवरों इंसानों की मिलती हैं, लेकिन इसका इनर सिस्टम इतनी जल्दी इंसान के जिस्म के साथ मिलता है कि आप जब पिक का गोश्त खाते हैं ना, तो इसकी सारी आदत, सारे रवैये इंसानों में आते हैं। अब ये तो इसकी फ़िज़िकल कुछ गंदगीज़ और इम्प्योरिटीज़ थी ना, इसकी हैबिट्स में भी बहुत गंदगी होती है। क्या? पहली बात है कि ये होमोसेक्सुअल होता है। ये वो जानवर है जो अपनी फीमेल से दूसरे जानवरों के ज़रिए जिना करवाता है। फिर इसी तरह आप देखिए, लालची जानवर है, ग्रीडी, सुस्त है, कीचड़ में रहता है। इसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो पकाने से भी ख़त्म नहीं होते। ह्यूमन बॉडी को 40 बीमारियां पिग के ज़रिए से लगती हैं। अब आप देखिए कि जिन सोसाइटीज़ में ये आम तौर पे खाया और पिया जाता है, और पता नहीं लोग क्या इसको समझ के खाते हैं, आज आप देखें कि वही सारी चीज़ें आपको इनमें दिखेंगी। होमोसेक्सुअलिटी, ज़िना, गंदगी और ग्रीड, मादे की मोहब्बत, ये सब हमारे जिस्म में आती हैं। आप देखिए, जो लोग सी फूड खाते हैं ना, वो मोस्टली बड़े कोल्ड होते हैं क्योंकि ब्लड नहीं होता उसमें। कुछ लोग बीफ खाते हैं, हाइपर होते हैं। आप अरब कल्चर में देखें, कुछ लोग ऊँट का गोश्त खाते हैं, वो और हाइपर होंगे, और ज़्यादा शिद्दत में होंगे। हमारा खाना हमारे जिस्म पे असर करता है। आप ख़ुद भी देखें, आप वेजिटेरियन बनते हैं या आप सैलड्स खाते हैं तो आप लाइट फील करते हैं, आप हैवी फूड पराठे खाते हैं तो आप बुझल फील करते हैं ना। अल्लाह ताला हमारा दुश्मन नहीं, और ना अल्लाह ताला पिक का दुश्मन है। उसने उसको पैदा किया, लेकिन वो क्यों पैदा किया था? ताकि वो कुछ और काम करे। तो हमें कहा कि खंजीर का गोश्त ना खाओ। अब सिर्फ लहमुल खंजीर नहीं, खंजीर या पिक की हर चीज़, इसकी खाल के बने हुए कपड़े, जूते, पर्स नापाक होंगे। ये लग पाता है, आप उसको टिंट करके, आप उसका पूरा केमिकल एनालिसिस करके, उसके ऊपर कोई प्लास्टिक कोटिंग कर दे, वो अलग बात है, लेकिन अगर एज इट इज़ इसकी चीज़ को आप पकड़ते हैं, छूते हैं, तो वो आपके हाथ नापाक हो जाते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके बाद इंसान महसूस करता है कि मुझे अपनी तबीयत पर कोई बोझ महसूस हो रहा है, वो भी इस जानवर की चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद इंसान के ऊपर बोझ आता है। खैर, अभी आप सुन लें, फिर आगे सवाल जहनों में आएंगे तो वो कर लीजिएगा। चौथी चीज़, मैंने कहा ना कि चार चीज़ों की लिस्ट बनेगी, टोटल 4 प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं इस्लाम में, मैता, दम, लहमुल खिंजीर, और अब चौथी चीज़ है वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, वो जानवर जिसको अल्लाह के नाम के सिवा पुकारा जाए। ये कौन सा जानवर है, ये क्या है? नंबर एक, वो जानवर जिसको ज़िबा करते वक्त अल्लाह का नाम ना लिया जाए। इस्लामिकली ज़बीहा का तरीका क्या है? जानवर को लिटाया जाता है और बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर कहकर उसकी गर्दन की वो रग काटी जाती है जो पूरे जिस्म से खून को लेके आ रही होती है। फिर जानवर को थोड़ी देर छोड़ना होता है। जानवर जब वो तड़पता, उलझता है, थोड़ा सा खून निकलता है, उसके बाद उसकी गर्दन काट दी जाती है। ये है इस्लामिकली ज़िबा। दो बातें लिख लें, ये जुमला यहाँ इतना मारूफ मसला नहीं, मैंने नहीं इतना आप इस मुल्क में सुना, लेकिन अमेरिका में फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन कह लें, या मोस्टली आस्क क्वेश्चन ये है कि जी क्या हम रेगुलर स्टोर्स का चिकन खा सकते हैं, क्या हम मैकडोनल्ड की चिकन खा सकते हैं, क्या हम केंटकी की चिकन खा सकते हैं, और नहीं खा सकते तो क्यों नहीं खाते? ये एक बहुत फेमस है, हर आने और जाने वाले से वो पूछते हैं, और कई लोग 30-30 साल से अमेरिका में रह रहे हैं, फिर हर आने वाले से पूछते हैं कि कोई एक कह दे खा लो तो हम खाना शुरू हो जाएं, क्योंकि खुशबू बड़ी अच्छी आती है और स्नैकिंग और लाइक दिस एंड दैट. तो समझ लीजिए वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह की रोशनी में एक एंगल तो इसका यह है कि वो जानवर जिसको ज़िबा करते हुए अल्लाह का नाम ना लिया जाए वो नहीं खा सकते. आज जितना भी हमें रेगुलर मीट मिलता है ना नॉन मुस्लिम शॉप्स में, उसको ज़िबा करने को ये लोग कहते हैं, हमारी ज़बान में झटका बोलते हैं उसको, सुना मैं अपने नाम. उसमें होता क्या है कि वो जानवर की गर्दन पूरी की पूरी एक ही साथ उतार देते हैं. बस इतनी सी बात है ना, वो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं ना अल्लाह अकबर पढ़ते हैं और जानवर को पूरा काट देते हैं. अब होता क्या कि जब एकदम स्टनिंग मेथड कहते हैं इसको, बोल्ड स्टनिंग कहते हैं, वो पहले जानवर को बल के एक छोटा सा शॉट लगाते हैं. वो इतने इनको रहम आता है जानवरों पे, कहते हैं कि जी ये तो जानवर के साथ बड़ा जुल्म है कि आप उसको तड़पता हुआ छोड़ दें, वो बेचारा तड़पे फिर उसको मारें. हम फौरन मार देते हैं और उसके नतीजे में उसके जिस्म का सारा वो गंदा खून जो ड्रेनेज वाला जहन में रखिए मिसाल, वो सारा खून जिस्म में जम जाता है. अब वो गोश्त होता है ना उसके अंदर वो गंदा खून मिक्सअप हो जाता है. तो आप देखें कि जब वो गोश्त ये इंसान खाते हैं तो फिर क्या क्या बीमारियाँ. जिन मुल्कों में इतनी सफाई, इतनी सुथराई, इतने मेडिकल चेकअप और इतनी इंश्योरेंसेस हो, क्या वहाँ कोई बीमार होना चाहिए बंदा? मैं तो सोचती इन मुल्कों में तो हॉस्पिटल्स की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए अल्लाह के हुक्म से. लेकिन आप देखें वो बीमारियाँ जो कभी सुनी ना देखी, स्किन डिजीज़ देखें, वजह क्या है? फूड का असर है. जब गंदे खून वाला गोश्त खाया जाता है तो उसका ये नतीजा निकलता है. इन्होंने एक एक्सपीरियंस किया कि हम देखते हैं कि मुस्लिम तरीके का जो गोश्त है उसके काटने में जानवर को ज़्यादा तकलीफ होती है या हम जिस तरीके से काटते हैं, जिस तरह ये इंक्यूबेटर्स टाइप होते हैं ना, ये बल्कि जो ECG मशीनें होती हैं, इन्होंने कुछ मशीनें दो जानवरों के अंदर फिट की जो जिस्म के अंदर होने वाले दर्द को रिकॉर्ड करते हैं. फिर उन्होंने एक जानवर को ज़िबा किया इस्लामिकली तरीके से और दूसरा उन्होंने ज़िबा किया अपने तरीके से. इनकी मशीनों ने बताया, मेरे पास वो प्रेजेंटेशन भी कहीं है, अगर दिखा तो मैं आपको दिखा दूंगी. उन्होंने दिखाया कि जिस तरीके से मुसलमान ज़िबा करते हैं ना, तो ये जो जानवर है ना उसको सिर्फ इतनी तकलीफ़ होती है जैसे किसी को हल्की सी सुई चुभती है, इतनी सी होती है, और उसके बाद उसको दर्द का एहसास ख़त्म होता है. क्योंकि ये जो रग कटती है ना, इसके अंदर जिस्म में पेन फील करने की रग होती है, बस वो कटने की ऐसी जैसे धागा काट दें. अल्लाह ने बनाया, आप किसकी बातें करते हैं? वो आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं जानवरों से, वो तो बिल्ली को भूखा नहीं रखने देता, कुत्ते को भूखा नहीं रहने देता, आप कोई ज़्यादा खैर ख्वाहें. उन्होंने कहा कि उनकी मशीन ने बताया कि एक बिल्कुल सुई चुभने की तकलीफ जानवर को, उसके बाद उसको नो पेन. और इसके बरक्स जो तरीका इन्होंने बताया कि पहले ये बोल्ट स्टनिंग करते हैं यानी गोली मारते हैं, जिसको अपनी ज़ुबान में कहें कि बुलेट के साथ जानवर को मारते हैं, उसकी वजह से जानवर जो है उसका दिल पहले ही फट जाता है. इतनी उसको तकलीफ़ होती है इस तरीके से कि इनके गर्दन काटने से पहले जानवर हार्ट अटैक की वजह से मर चुका होता है. अब आप ज़रा इमेजिनेशन में लाएं, एक जानवर जो धड़के से मर गया, उसकी गंदगी भी जिस्म में, उसका खून भी जिस्म में, और दूसरी तरफ ना उसको तकलीफ़ हुई ना कुछ हुई, तो वो जायज़ है कि ये सही है? तो अल्लाह के नाम के साथ अल्लाह के तरीके से दो शरायत हैं. नंबर एक अल्लाह का नाम लेना, और दूसरी बात है कि उसके जिस्म का फालतू खून निकल जाए, दैट्स इट. अब ये काम मुस्लिम कर ले, नॉन मुस्लिम कर ले, नॉन मुस्लिम से मुराद क्रिश्चियन कर ले या ज्यू कर ले, कर ले. आगे मायत 5 में आने वाले हैं, उसमें आप पढ़ेंगे कि क्या अहले किताब औरतों से शादी हो सकती है. यानी इतना अहम टॉपिक है, सिर्फ 5 आयतें, लेकिन हम पूरी नहीं कर पाएंगे इसको भी. वजह क्या है कि एक एक आयत के अंदर इतने काम आते हैं. कितना सवाल है, क्रिश्चियन औरत से शादी हो सकती है मुस्लिम से? नहीं, वो आगे आने लगा जवाब. लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ये सब कुछ क्यों बताया कि तुम समझ जाओ कि ठीक है. अब ये तो है वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही का एक मफहूम जो हमने पिछले हिस्से से मिला के किया. इसका एक दूसरा एंगल समझ लें, और वो क्या है कि वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही का एक तर्जमा क्या बनता है, वो जानवर जिसको अल्लाह के नाम के सिवा किसी और के लिए ज़िबा किया जाए. बात बनती है? अल्लाह के नाम के सिवा किसी और की खुशी के लिए किसी की कब्र पे ले जाके, किसी के आस्ताने पे ले जाके ज़िबा किया जाए. अरबों का ये आम रिवाज था कि अपने बुतों के सामने जाके उनकी खुशी के लिए जानवरों को भेंट चढ़ाते थे. एक दफ़ा एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से कहा कि मैंने इस्लाम कबूल करने से पहले एक मन्नत मानी थी कि मेरा फलां काम अगर हो गया तो मैं बवाना वादी में जाकर एक ऊँट ज़िबा करूँगा, तो क्या मैं वो अपनी मन्नत पूरी कर सकता हूँ? तो आपने पूछा, क्यों माननी थी ये मन्नत? क्या वहाँ कोई बुज़ुर्ग की कब्र है? कहा, नहीं अल्लाह के नबी। कहा, कोई वहाँ कुआँ है जिसकी लोग इज़्ज़त तज़ीम करते हैं? कहा, नहीं। कोई दरख्त है? यानी आपने इतनी रिसर्च की कि कहीं कोई शिर्क के वहाँ असरात तो नहीं है? कहा, नहीं अल्लाह के नबी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं किसी मुश्किल में फंसा था तो वो दिल में आता ना कि ज़रा मुश्किल नेकी करूँगा तो अजर मिलेगा ज़्यादा, ऐसे ही मैंने नियत कर ली थी। जब उन्होंने पूरे यकीन से बता दिया कि वहाँ ऐसा कोई काम नहीं, तो फिर आपने कहा, अच्छा अब अपनी मन्नत पूरी करो। तो क्या पता चला कि अल्लाह के नाम के सिवा किसी और की खुशी के लिए कोई चीज़ ज़िबा करनी, किसी कब्र पे ले जाना कि साहिब कब्र की खुशी के लिए वहाँ इस बकरे को कटा के खिलाया पिलाया जाए, तो इस्लाम इसको भी हराम करार देता है। इसमें खाना भी आ सकता है, इसमें गलत अकीदे के साथ आप कोई भी काम करें वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, बात इधर पूरी हो गई। मैता, दम, लहमुल खिंजीर और उहिल्ला लिगैरिल्लाह, ये चार चीज़ें पूरे इस्लाम में हराम हैं। ये चार शजराते ममनुआ कह लें, मना किए हुए दरख्त हैं। आगे ये जो चार लफ्ज़ आ रहे हैं ना, ये मैता की डिटेल है। खुद मरा हुआ जानवर कैसे मरे? अल मुनहनिका, गर्दन घुट गई, जानवर की रस्सी अपने ही गले में बाज़ दफ़ा घुटती है, दिमाग की ऑक्सीजन ख़त्म हुई, मर गया। अब किसी के पास बकरियां थी, बाद में सुबह आया देखा एक बकरी के गले में उसी की रस्सी घुटी हुई है, तो वो भी नहीं खाएगा, क्योंकि वो वही बात, ये बिल्कुल उसी की डिटेल है। मैता की चार किस्में, खुद से मरने की एक किस्म, गले में रस्सी घुट गई। वल मौकूज़ा, लाठी लग गई, जानवर को पकड़ रहा था जो शेफर्ड था वो उसको लाठी मार रहा था, सीधी हो जाओ, वो लाठी कहीं ऐसी जगह पर लगी, वो मर गया, वो भी नहीं खा सकते। अरब लोग जानवर को डंडों से मार मार कर खाते थे, कभी किसी को चूहा मारते देखा? इस तरह जानवरों को ज़िबा करते थे, ये डंडे मार मार के उनका कचूमर निकाल देते, उसकी वजह से। और आज ये जो स्टनिंग मेथड आपको बताया वो भी यही है, उनको एक किस्म का उसके दिमाग को कुचल देते हैं। बहरहाल इस तरह का जानवर भी इंसान नहीं खा सकता। तीसरी चीज़ है वन नतीहतु, और वो जानवर जो किसी के सींग मारने से मारा हो, दो जानवर आपस में लड़ पड़े, एक बकरी ने दूसरी को सींग मार दिया, वो मर गई, वो भी नहीं खा सकते। चौथी चीज़ वमा अकलस सबू, जिसको किसी दरिंदे ने खा लिया, कोई जानवर आके मार गया, कोई शेर खा गया, क्योंकि जानवरों के दांतों से जरासीम लग जाते हैं, तो ऐसे जानवर को भी नहीं खा सकते। हाँ मगर इल्ला मा सकई तुम, इन चारों सूरतों में जानवर के मरने से पहले अगर इस्लामिकली तुम ज़िबा कर लो तो खा सकते हो। अगर आप इस आयत को थोड़ा सा मज़ीद अच्छा समझना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, इसके बाद वद्दम से लेकर, इससे पहले एक ब्रैकेट लगा लें, और लिगैरिल्लाहि बिही, इसके साथ ब्रैकेट क्लोज कर लें, तो आपको बात ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी कि असल मज़मून क्या है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, कैसे? वल मुनहनिकतु वल मौकूज़तु वल मुतरद्दियतु वन नतीखतु वमा अकलस सबू इल्ला मा ज़क्कैतुम, यहाँ तक एक बात पूरी होती है। बीच में जो बात है ना, वह लहमुल खिंजीर और वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तीन चीज़ें बल्कि। तो मैता लफ्ज़ को हम थोड़ा सा वाज़े कर लेते हैं इधर, कि मैता क्या? जो ख़ुद ब खुद मर जाए। अब कोई भी जानवर ख़ुद ब खुद, मैता क्या होता है? जो ख़ुद ब खुद मर जाए, ठीक है, जो जानवर ख़ुद ब खुद मर जाता है वो मैता है। अब ख़ुद मरने की सोचिए कंडीशंस क्या होंगी। पहली बात ये है कि कोई बीमार होके मर गया, नंबर एक लिख लें आप अपने पास, ताकि आपका जहन इस पर क्लियर हो जाएगा कि ख़ुद ब खुद जानवर जो मर जाता है वो मैता की कैटेगरी में आता है। दूसरी चीज़ आप देखिए, जानवर के मरने की क्या है कि उसकी अपने ही गले में रस्सी जो थी वो लग गई और गला घुट गया, मुमकिन है ना, कोई भी जानवर था उसके गले में उसकी रस्सी आ गई और वो मर गया। तीसरी सूरत हमने यहाँ देखी, वल मौकूज़ा, छड़ी लग गई। मुनहनिका का जो लफ्ज़ है ना, इसका रूट लिखिएगा खा नून काफ, खुनुक, ये गर्दन जो होती है ना, ये हिस्सा जहाँ से किसी का गला घुट जाता है उसको कहते हैं एहतनाक, घुट्टी देने को कहते हैं। बच्चा पैदा होता है ना तो उसके गले में कोई ऐसी थोड़ी सी चीज़ लगा देते हैं ताकि वो एक किस्म की सुन्नत पूरी हो जाती है कि उसने सबसे पहले क्या खाया। तो खुनक बुन खानिका के लफ्ज़ में क्या है कि जानवर की अपनी ही रस्सी उसके गले में लग गई। लफ्ज़ मौकूज़ा का जो रूट है वो वाओ काफ ज़ाल है, वकज़ा वकज़ा। और मौकूज़ा का लफ्ज़ दोनों मिला लें तो क्या बनेगा कि वो जानवर जिसको छड़ी लग गई। तो ऐसा जानवर भी जो किसी भी किस्म की छड़ी लगने से या कोई चोट खाने से, अब छड़ी लगी है तो इससे मुराद आज ले लें कि जानवर हिट कर गया, गाड़ी को टक्कर हो गई और जानवर मर गया। कई दफ़ा आप सड़कों पे ऐसे जानवर गिरे पड़े देखते हैं। तो ऐसा जानवर जो किसी हिट से मर जाए, ठीक है। तीसरा वल मुतरदिया, बुलंदी से नीचे गिरा हुआ। बाज़ दफ़ा जानवर पहाड़ी इलाकों में जब चर रहे होते हैं तो किसी का पाँव फिसलता है तो वो पहाड़ी से गिर जाता है। बाज़ दफ़ा बकरियाँ शरारत करते हुए किसी दरख्त पे चढ़ती हैं तो दरख्त से बुलंदी से नीचे गिरी, मुमकिन है ना, तो वो भी मर गई। तो ये वो मुतरदी आ गई। एक और सूरत के वन नतीहा, नतीहा कहते हैं सींग मारने को, नतहा नून तोए हा इसका रूट होता है, कि जब जानवर आपस में लड़ते हैं बाज़ दफ़ा तो वो लड़ते मरते हैं और ख़त्म हो जाते हैं अंदरूनी तौर पर ही। उनके अंदर इस तरह की गहरी चोट बाज़ दफ़ा लगती है, ब्लीडिंग हो जाती है। बाज़ दफ़ा जानवर के सींग के ज़रिए से दूसरे जानवर को चोट लग जाती है। तो इस तरह की तमाम सूरतों में भी जानवर का गोश्त हम नहीं खा सकते। फिर उसके बाद है वमा अकलस सबू, जिसको दरिंदे खा गए। सबू अरबी ज़ुबान में कहते हैं दरिंदों को। दरिंदा क्या होता है? वो जानवर जो जैसे चीर फाड़ करते हैं, मसलन शेर, चीता या भेड़िया। इनकी आदत क्या होती है कि ये अपने दांतों के साथ दूसरे जानवरों का खून निकालते हैं। अब कोई बकरी थी जंगल में, बेचारी अकेली थी, उधर से शेर आ गया, शेर ने इसको ज़ख्म लगाया और वो मर गई, इससे तो नहीं खा सकते। हाँ, इन चारों सूरतों में खाने की एक शर्त है, इल्ला मा ज़क्कै तुम, मगर ये कि पाक कर लो तुम। लफ्ज़ ज़किया जो होता है ना, ज़किया ज़कात तज़किया, लफ्ज़ ज़कात भी इसी से ही है। मुराद ये कि पाक कर लो। पाक करने से मुराद क्या है कि ज़िबह कर लो। मसलन किसी ने देखा कि एक बकरी है, उसको गाड़ी ने हिट लगाई, अभी वो बेचारी तड़प रही है, मरी नहीं, चोट लगी है, तो फ़ौरन उसको रग काट के इस्लामिकली उसका ज़िबह करो, फिर खा सकते हो, क्योंकि उसमें वैसे तो कोई हर्ज नहीं। अगर आप गौर करें ना तो यहाँ पूरी चीज़ जो है वो क्या आती है कि जिस्म से गंदा खून निकल जाए, जिस पे हमने पीछे भी बात की कि खून जिस्म में गटर की पाइपों वाला काम करता है। हमारे सारे जिस्म में ब्लड इस तरह सर्कुलेट होता है और सारा सिस्टम चलता रहता है जैसे आपके सिंक के पाइप काम करते रहते हैं। जहाँ क्लॉट्स आ जाते हैं, जहाँ आपके पाइप काम करना छोड़ देते हैं, वहीं आप देखते हैं कि कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कभी जिस्म के अंदर फासद मादे हुए, पिम्पल्स निकल आए, ज़ख्म हो गए। तो खून का जिस्म में बड़ा अहम रोल होता है। करता वो जिस्म को साफ़ है लेकिन होता खुद गंदा है, जैसे गटर का पानी खुद गंदा हो जाता है लेकिन हमारे सिंक साफ़ हो जाते हैं। अब वो गटर मिला पानी जिस्म में आ जाए तो कैसा लगे? तो वो जानवर जिनको आज हम मैकडोनल्ड्स पे, कैंटकी पे, जहाँ भी, मैं नाम सिर्फ इसलिए लेती हूँ कि बाज़ लोगों को बात खुल के ही समझ आती है कि कोई ऐसा फूड स्टोर, कोई ऐसी फूड चेन जो इस बात का ना तो वो दावा करते हैं कि जी हमने मारते वक्त इनका खून निकाला था, और ना अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर। तो ऐसा गोश्त खाना एक तरफ छोड़ दें, सवाब और गुनाह को बिल्कुल एक साइड पे कर दें। अभी उसको तो हमने देखा ही नहीं ना, जन्नत को या जहन्नम को, इस दुनिया में देखे कि आपको कोई खाना पका कर दे और उसमें एक गिलास गंदे पानी का डाल दे, आपको सिर्फ शक पड़ जाए कैसा लगेगा। खून डाल दे आपके खाने में कि रंग अच्छा हो जाए, नहीं खाएंगे ना। और इस खून मिले गोश्त को खाने के लिए आज वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखिए जो बीमारियां पैदा हो रही हैं, इससे सबसे ज़्यादा जो बीमारियां पैदा होती हैं ना वो स्किन डिजीज़ पैदा होती हैं। मैं आपको छोटा सा एक मतलब एक देती हूँ, थोड़ा सा असाइनमेंट आप करके देख लें प्रैक्टिकली। आप नॉन मुस्लिम लोग स्पेशली जिनकी उम्र 40 से ऊपर जाती है उनको बिल्कुल सन लाइट में उनको देखें, उनकी स्किन के ऊपर ना आप छोटे 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 तिल देखेंगे। कभी नोट किया आपने? स्किन पे ना होते वाइट हैं ये, लेकिन आप इनको बिल्कुल सनलाइट में देखें ना तो हल्के हल्के भूरे भूरे रंग के तिल या कुछ इस तरह के मार्क्स होते हैं। ये ऐसा गोश्त खाने की वजह से होते हैं। क्योंकि उनके जिस्म के अंदर वो सारे फासद मादे, नंबर एक के ब्लड मिला गोश्त खाते हैं, दूसरी फिर चीज़ जो इसमें हमने वद्दम में ये चीज़ें आ गई, खून नहीं खाना, खून नहीं पीना किसी भी तरह, क्योंकि ये तो ऐसी है कि जैसे कोई गंदा पानी पी ले गटर वाला। तीसरी चीज़ लहमल खिंजीर, खिंजीर के गोश्त पर हमने बात की कि इतना गंदा, इतना डर्टी, जिसका अखलाक भी गंदा, जो जिना भी करता, जो लालची भी है, सोया रहता है, हर वक्त सुस्त है, लेज़ी है, दूसरों के भी चीज़ें खा जाता है। अब वो सारी हैबिट्स अगर आप देखें तो उन लोगों में आपको दिखेंगी। आज दुनिया में होमोसेक्सुअलिटी क्यों है? ये पिक्के गोश्त का असर है। हम जो खाते हैं ना उसका असर हमारी जिस्म पर आता है। हमें भूख लगती है तो हमारी शुगर लो होने लगती है। हम इनर्जेटिक फूड, फ्रेश फूड खाते हैं तो हम हेल्दी फील करते हैं। हम घी लगा खूब पराठा खाते हैं तो हम सुस्त क्यों होने लगते हैं। चाय पीते हैं तो हमारी नींद क्यों उड़ जाती है। दैट मीन के फूड हैव डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ऑन आवर बॉडी। तो जब लोग पिक्का गोश्त खाते हैं तो नतीजा क्या होता है कि उनके अंदर ना चाहते हुए भी वो सारी चीज़ें आने लगती हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम इसको ना खाओ। अगली चौथी चीज़ जो आखिरी है इसमें वो क्या है, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, और उसको भी ना खाओ। इसके दो मैंने आपको तर्जमे बताए। नंबर एक कि जिस पर अल्लाह के माँ सिवा किसी और का नाम लिया जाए, किसी बुज़ुर्ग के नाम का, किसी की कब्र का छतरा, कोई कब्र के ऊपर दफन करने वाले लोग और किस तरह के काम है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या आती है कि जिसको ज़िबा करते वक्त किसी का भी नाम नहीं लिया गया, मसलन बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर, ये पहली शर्त है इस्लामी कली ज़बीहा की। कोई बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर की बजाय कहता है कि बिस्मी हज़रत अली, हज़रत अली के नाम पर ज़िबा करता हूँ। मिसाल देती हूँ, कोई अबू बकर सिद्दीक़ के नाम पे क्यों ना करे, क्योंकि उनसे बड़े वलीउल्लाह कौन होंगे। नबियों के बाद तो अगर सबसे बड़े वलीउल्लाह हैं तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है ना, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु है। तो अगर किसी बुज़ुर्ग की खुशी के लिए, बहुत बारीक सा फ़र्क होता है जो समझ ना आने की वजह से बाज़ दफ़ा लोगों को पता भी नहीं चलता और वो शिर्क करते रहते हैं, और बाज़ लोग हर वक्त शिर्क ही शिर्क कहते रहते हैं हालांकि वो कम शिर्क नहीं होता। फ़र्क महसूस कीजिएगा, कोई शख्स फौत हो चुके हैं, आप उनको सवाब देने के लिए उनकी तरफ से सदका करते हैं। मिसाल है कि आप अल्लाह के नाम पर बकरा काटते हैं, गोश्त की बिरयानी पकाते हैं, या आप कोई दाल चावल पकाते हैं, आप फीस बिलीला गरीबों को खिलाते हैं, क्या सोच के कि जैसे मैंने खाना आपको खिलाया अगर, तो मेरा ये मकसद था ना कि आप जो खाना खाएं उसका अजर मुझे मिले, और अगर उस खाने से स्कूल को कोई पैसे मिलेंगे तो आप स्कूल को फ़ायदा हो, ये मेरी नीयत है ना। अब मैं मर गई तो कल मेरी मोहब्बत में या मेरे से कोई प्यार करने वाला ये कहता है कि चलो भाई हम अल्लाह ताला इनको सदका जारिया देने के लिए हम भी यही काम करते हैं, वो कुछ खाना लें, जमा करें किसी स्कूल में, मदरसे में, किसी मस्जिद में, जहाँ भी कोई दीन का काम होता है वो जाके खाना ये सोच के खिलाएं कि ये खाना हम इसलिए खिला रहे हैं कि इस खाने का जो भी नेकी होगी, अजर होगा, वो मुझे मिले, मेरी रूह को मिले, कोई हर्ज की बात नहीं है, सवाब है। लेकिन कोई मेरे नाम पे करे, अब फ़र्क क्या, इतना बारीक फ़र्क है। हमारी उम्मत कितनी पस्तियों में गिरी पड़ी है, इतनी शिर्क की दलदलें हैं हमारे मुल्कों में कि मैंने पिछले वीक एक क्लास में ये क्लिप्स दिखाए कि हम पूरे देख नहीं सके। आज इतना शिर्क है हमारे पाकिस्तान में, हमारे अपने मुसलमान मुल्कों में, यहाँ भी होगा, हर जगह होगा, लेकिन जो ज़ुबान सदे आम है वो ये कि जहाँ जहालत होती है और जहाँ गवर्नमेंट कुछ उस पर कोई एक्शंस नहीं लेती तो शिर्क इतना है कि लोग कब्रों पे बैठे भांग पी रहे, चरसें पी रहे, खा रहे पी रहे, कोई उनको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन मेरे लिए कोई जाए अपना बकरा लेके दाता दरबार, मिसाल देती हूँ, बड़ा मारूफ दरबार है एक पाकिस्तान में, लाहौर में, हजवेरी पाकपतन में, ये लाहौर में। अब लोग वहाँ बकरा लेके आते हैं दूर से और क्या कहते हैं कि दरबार पे जाके हमने ज़िबा करना है। अल्लाह ताला ने इससे क्या मना किया, वमा ज़ुबिहा अलन नुसुब, और वो भी हराम है जो ज़िबा किया जाए नुसुब पर। अब लफ्ज़ नुसुब को अगर आप गौर से लफ्ज़ों में देखें तो नून स्वाद बा, उर्दू में भी हम ये लफ्ज़ बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कहते हैं ना झंडा नसब करना है, नसब करना कहते हैं गाड़ने को। मक्का वाले और अरबों का एक रिवाज क्या था कि इन्होंने अपने जो बुज़ुर्ग थे ना उनके बुत बना के दरगाहें बनाई हुई थी। मसलन अगर कोई जहन में आपके किसी भी मंदिर का कोई सीन आ रहा होगा तो आप देखेंगे कि वहाँ मूर्तियाँ रखी होती हैं, जहन में आता है कोई मंजर, वो मूर्तियों का रखा जाना ही उस जगह को नुसुब बना देता है। करते क्या थे कि अपने नेक लोगों की, बुज़ुर्गों की, या जिनको आज हिंदू अपने तौर पर परमात्मा और ईश्वर और भगवान कुछ समझते हैं, वो उनकी पहले मूर्तियाँ बनाते हैं, फिर एक कमरे को मंदिर बनाया उसमें वो लगा दी। अब वो बेचारे तो हिंदू कहलाते हैं ना ये करके। हम मुसलमान क्या करते हैं, हमने भी इसी तरह लोगों की दरगाहें बनाई। किसी एक के नाम पर कोई ऐसा काम किया। अब ये करते क्या था कि मिसाल है कि बकरा कुर्बान करना है, ज़िबा करना है, सदका देना, ये वहाँ नहीं करते थे कसाई की दुकान पे या जहाँ अपने घर में खुद कर सकते। वो बकरे चतरे को उठा के लेके जाते उस बुत के थान पे, इस थान भी उसको बोलते थे, आगे भी ये लफ्ज़ आएंगे, और साथ ही साथ कहते थे ये हमारे बुज़ुर्गों के आस्ताने हैं। ये लफ्ज़ उर्दू में आपने कभी सुना, आस्ताना है फुलां और दरगाह फुलां, हाँ ये बिल्कुल वही बिगड़े हुए नाम थे। फिर क्या करते थे कि उस कब्र पे जाके बकरे को ज़िबह करते थे या जो भी जानवर था, और सोचते क्या थे कि इस साहिबे कब्र या इस बुज़ुर्ग को या इस बुत को खुश करने के लिए हमने ये ज़िबह किया। मसलन पीछे आपको जादू का टॉपिक जब दूसरे पारे में पढ़ाया गया था तो वहाँ इस पे हमने बात बड़ी डिटेल से की थी कि जो लोग जादू टोना करते हैं ना, तो वो अक्सर लोगों से कहते हैं मुझे काला बकरा ला के दो। भाई तुम क्या, हम खुद ही सदका करते, नहीं, हमें काला बकरा ला दो। वो क्यों आपसे लेते हैं? वो काले बकरे लोगों से खरीद लेते हैं पहले, जिनका काम उन्होंने करना है, फिर उनको शैतानों के नाम पे जाके हजिबा करते हैं और कहते हैं जंगलों में जाके वीरानों में कि ऐ शैतान, यानी डेवल, रियल शैतान, एक तो आम शैतान है ना जो हम सोचते हैं, रियल शैतान को खुश करने के लिए वो ज़िबा करते हैं कि देखो हम तुम्हें खुश कर रहे हैं, अब हमें इन कामों के करने पे तुम सताना नहीं। इस वजह से इनके काबू में जिन और गंदी चीज़ें आ जाती हैं, वो इनसे खुश हो जाती हैं, उनको खून चाहिए होता है, वो खून मांगती हैं, बाज़ मरी भी रूहों के नाम पर सदके करते हैं। तो ये सिर्फ़ एक गोरख धंधा है ना, अल्लाह के नबी की कोई सीरत की किताब में आप देख लें कि आप किसी मौके पर ऐसे काम करते दिखते थे। तो अल्लाह ताला ने आज हम सबको बता दिया कि वमा जुबिहा अलन नुसुब, हर वो खाना, चाहे दूध की वो कोई सबील लग जाए, चाहे कोई वो गोश्त की देख है, कोई खाना है पीना, जिसको लोग दूसरों की खुशी के लिए या खुशनूदी के लिए खर्च करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो तुम नहीं खा सकते। वो सारे मुकामात जहाँ गैर अल्लाह के नाम की नजरों न्याज दी जाए, आपको नज़र देनी है अल्लाह के नाम की दीजिए, आपको न्याज देनी है अल्लाह के नाम की दीजिए, आपको सदका देना है अल्लाह के नाम का दीजिए। अच्छा, जितने भी लोग ये करते भी थे ना, अल्लाह के नबी या आपके सहाबा जब आके उनको कहते कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये लात के आस्ताने पे तुम आके बैठ गए हो, मनात की देवी के पूज, तो क्या कहते, ना 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 ना, हम इनके थोड़ी देते हैं, हम तो ऊपर वाले के लिए देते हैं। तो भाई इधर क्यों आए, तुम वहाँ क्यों नहीं गए? याद एक ख़ास दिन जब उनका उर्स होता था ना, साल का एक दिन, लफ्ज़ उर्स सुना भाई आपने? आपको पता है उर्स क्या होता है? किसी को भी नहीं पता होगा इल्ला मास चंद के। जी आप बताएं, जी आप बताएं, उर्स मनाते हैं दरबारों पे, और जब कोई बुज़ुर्ग का इन किसी बड़े, इनके ख्याल में जो इनके बड़े बुज़ुर्ग होते हैं ना, जब उनमें से कोई मरता है तो उसके मरने के एक साल के बाद, जिस तरह आम लोगों की बरसी मनाते हैं ना, तो वो बुज़ुर्ग का उर्स होता है। आज आपको मैं इसकी हिस्ट्री सुनाऊं कि ये उर्स लफ्ज़ क्या है। देखिए उर्स, उरूसा लफ्ज़ सुना है आपने कभी? उरूसी जोड़े, दुल्हन को कहते हैं उरूसा, उर्स शादी को कहते हैं। इनके अकायद, अब आम सीधे साधे लोगों को कख पता नहीं, वो लगे हुए क्योंकि अम्मा कर रही थी, दादी कर रही थी ना, इनको नहीं पता। जो लोग ये, जिन लोगों ने ये टर्म उर्स निकाली, ना तो नबी सल्लम का कभी उर्स हुआ, ना कभी अबू बकर का उर्स आपने सुना। आप जाके सऊदी अरब वालों से पूछ लें कि जी अबू बकर का उर्स कब होता है। इस्लाम का तो ये मिजाज ही नहीं, ना इस्लाम किसी के जीने को मनाता ना मरने को मनाता। इस्लाम की निस्बत तो कामों से, अगले हिस्से में हम बात थोड़ी सी उस पर कर लेंगे, अभी हम सिर्फ शिर्क के इर्द गिर्द रहना चाहते हैं ताकि इस मौजू को आज अच्छी तरह समझ लें। और ये मौजू आज तक आपसे शेयर नहीं किया गया पिछले पूरे 5 पारों में, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। जहाँ मौका बनता है बात आ जाती है, समझ आने लगती है, दलाइल के साथ बात होती है, दिल जम जाता है। अब होता क्या है कि ये सोचते हैं कि कोई बुज़ुर्ग अपनी ज़िंदगी में इबादत कर करके, नेकियां कर करके अल्लाह के इतना करीब हो जाता है, अल्लाह से उसको इतनी मोहब्बत है कि दुनिया में ही वो पहुंचा हुआ है। एक जुमला हमारे यहाँ बड़ा बोलते हैं, फलां वो तो जी बड़ा पहुंचा हुआ बुज़ुर्ग है। वो पहुंचा हुआ क्या है? वो सोचों में ऊपर पहुंचा हुआ है। इनका अकीदा क्या था कि हमारे बुज़ुर्ग जब मरते हैं ना, तो मरने के बाद ये दूसरी दुनिया में जाकर अल्लाह के मददगार बन जाते हैं। अब समझिएगा, इन अरबों का या मुशरिकीन का अकीदा क्या था कि जो नेक लोग होते हैं, जो वली, जो बड़े कराम कुतुब और बड़े बड़े नेकियां करने वाले बुज़ुर्ग जो हैं, जब ये मरते हैं ना, तो मर के दूसरी दुनिया में नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के हेल्पर्स बन जाते हैं, कि अल्लाह तो अब इतना मसरूफ़ है, वो सबको बेटे कैसे दे, किसी को दे, तो अल्लाह ने इन बुज़ुर्गों के नाम काम लगा दिए हैं कि फ़लां दाता साहब आप इनको दौलत देते दें, फ़लां अब्दुल्ला शाह गाज़ी साहब आप बेटे देते दें, और लाल शहबाज़ कलंदर साहब आप ये कुछ करते रहें। इस तरह की कहानियाँ लोगों ने खड़ी हुई थी। नतीजा क्या होता था कि जब कोई बुज़ुर्ग मरता था तो लफ्ज़ उर्स में नऊज़ बिल्ला बड़ा ख़राब लफ्ज़ है, कहते कि इन अब आप किसी को भी पूछ ले जो लफ्ज़ उर्स के नाम से मारूफ हैं, और अगर आते जाते हैं उनको बात नहीं पता होगी, वो आपको डांट के बिठा देंगे, कहेंगे बैठ जाओ तुम वहाबी बनती जा रही हो। लेकिन उन गरीबों को भी नहीं बेचारों को पता कि लफ्ज़ उर्स से ये तसव्वुर क्या लेते हैं कि नऊज़ बिल्ला जिनकी अल्लाह से शादी हो गई, ये अगले जहान में जाके अब शादी हो रही है, ये हम तो कह रहे हैं ये मर गए हैं, लेकिन उर्स मरत खुशी शादी, यानी आज इनकी मौत से नऊज़ बिल्ला विसाल हो गया इनका अल्लाह से। फसल कहते हैं जुदा होने को, वसल कहते हैं वसाल मिलना, जॉइंट टू विद अल्लाह सुब्हान तआला। बताइए फिर ईसाइयों का अगर हज़रत ईसा को वो सन ऑफ गॉड कहते हैं, जीसस गॉड कहते हैं, तो क्या फ़र्क है? लेकिन हम जैसे लोग जो बेचारे सीधे साधे ना इन बातों को सुनते हैं, अब ऐसे बुज़ुर्गों की कब्रों पे जा जा के ये कभी कुछ करते कभी कुछ करते थे, अल्लाह ने कहा ऐसा तमाम मामला वमा ज़ुबिहा अलन नसुब, तुम इसको नहीं कर सकते, ना खाओ। इसकी कई किस्में, बाज़ लोग मुहर्रम के महीने में सबील लगाते हैं, इमामों के नाम की सबील है, क्यों कि करबला में वो प्यासे मरे थे, अब हम सबील लगाते हैं। बहुत लंबी कहानी है, यकीन करें कि मैं कहती हूँ अनपढ़ ही रहे बंदा तो सारी ज़िंदगी जो कर करा के चला गया वही बेहतर है, जब इल्म लग जाता है फिर दुनिया को बंदा यूँ देखता है जैसे माइक्रोस्कोप के नीचे से जरासीम को देखते हैं। जो काम मुआशरों में धूम धड़ल्लों से हो रहे होते हैं उसकी असल करने वालों को भी नहीं पता होती। अगली चीज़ भी ज़रा साथ ले लें कि वन तस्तकसिमु बिल इस्लाम, ये भी हराम है कि तीरों के ज़रिए से किस्मत मालूम करो। अरब लोग काम करने या ना करने के लिए तीर इस्तेमाल करते थे, इनके पास मुख्तलिफ तीर होते थे, जैसे एरोज़ होते हैं ना, उन तीरों के ऊपर लिखा होता था, कुछ पे लिखा होता था कर लो इफ़ल डू इट, कुछ पे लिखा होता था ला तफल डोंट डू दिस, किसी तीर पे लिखा होता था डू इट टुमारो कल करना, हाँ एफल गदन कल करना। कुछ तीर जो होते थे ना वो खाली होते थे। अच्छा अब हुआ क्या कि जब ये सारे तीर थे, अब मिसाल है कि इनको सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान जाएं कि ना जाएं, अब ये क्या करते उस तीर वाले बाबे या उस तोते वाले के पास जो लोगों की किस्मत निकलवा रहा है, फाल गिरी कर रहा है, जाके कहते हैं भाई लाओ बाबा जी ज़रा मेरी फाल तो निकालो, मैं पाकिस्तान जाऊँ कि ना जाऊँ। फिर वो तीर होते थे ना तो इस तरह से तीरों को ले कर ना वो पकड़ के तो वो जो सामने लगी हुई चीज़ थी उस पर मारते, और बाज़ दफ़ा तीर उठवाने के लिए मासूम बच्चों को कहते जाओ बेटा तुम कोई तीर उठा लो, कभी किसी बुज़ुर्ग को कहते, कई किस्म की कहानियाँ थी। तीर में आ जाता एफल करो तो वो बाबा जी कहते जी बिल्कुल करो करो ये काम बड़ा मुबारक है बहुत अच्छा शगुन है, तीर पे लिखा आ जाता ना करो तो कहते ना 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 ये काम ना करना अच्छा नहीं है, किसी पे आता कल कर लो, कुछ ना होता तो फिर इसका अंदर तक सेकंड चांस एक और बार करो, और इस तरीके से काम मालूम करते थे। इस्लाम ने आज क्या किया, इस्तखारा करो, कोई काम करना है कब करूं अब करूं क्या करूं कहां करूं इस्तखारा करो। अल्लाह के नबी सल्लम अपने साथियों को इस्तखारे की दुआ इस तरह से सिखाते थे जिस तरह से कोई दूसरी दुआ सिखाई जाती है, और आप अपने लोगों को इस तरीके से ये सारी बातें बताते थे कि जिसकी वजह से लोग अपने कामों को बड़े यकीन से करते थे। हुक्म भी आज हमें भी यही है कि भाई तुम अपने काम अच्छे तरीके से करो, तुम अपने कामों को अल्लाह के मशवरे से करो, अक्लमंद लोगों से मशवरा करो, फिर उसके बाद तुम इस्तखारा करके अपने दिल को मुतमईन कर लो। ये इस तरह की बातें करते, आज हमारे यहाँ इसकी कोई बिगड़ी हुई सूरत है? आप जाके ज़रा किसी बस अड्डे या सड़कों के किनारे फुटपाथों पे बैठे तोते वालों को देखिए, तोते वाला फाल निकालता है, सुने कभी आपने? मट्टी सारे दिन की उसके मुंह पे पड़ती है गरीब की, घोड़ों की लीद उसके करीब पड़ी होती है, और वो बेचारा लोगों की किस्मतों के हाल बताता है कि जी ये जॉब कर लो ना कर लो, ये तुम्हें इससे फ़ायदा होगा कि नहीं, इससे क्या होगा कि नहीं होगा। एक दफ़ा एक शख्स ऐसे ही तोते वाले के पास गया, कहने लगा कि मुझे तुमसे कुछ पूछवाना है। और वो करते क्या हैं कि मुख्तलिफ जैसे छोटे छोटे लेटर पैड्स होते हैं ना, वो उस पर कुछ ना कुछ चीज़ें लिख के छोटे छोटे लिफाफों की सूरत में अपने सामने एक छाबड़ी सी लगा लेते हैं। तोता एक होता है जिसको उन्होंने सुधाया होता है, वो उनके हाथ पे बैठ गया, इधर बैठ गया, कोई आता है जी मेरी किस्मत का हाल मिला तो कहता ओ तोते चल कर वो तोते से फल निकलवा। अब तोता बेचारा बेअकल मासूम, ना उस बेचारे का कोई हिसाब ना किताब ना उसके अंदर कोई सोचने का, वो जो भी लिफाफा उठाता है ना वो यूं पकड़ के ले आता है। तो कहता है बस ये आ गई आपकी किस्मत। अब बंदे का दिल डर रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। फिर वो खोल के कहता है अभी नहीं अभी नहीं, जॉब मिलेगी नहीं, जो उसमें लिखा होता है ना उसके हालात के मुताबिक इंटरप्रेट करके उसको बता देता है। किसी को कहते हैं, और अक्सर लोगों को बड़ा अच्छा बताते हैं कि तुम्हारी बस किस्मत खुलने वाली है, बस 6 महीने तंगी के हैं फिर बहुत होगा, बस इसके बाद तुम्हें बहुत जॉब मिलेगी। तो एक बंदा था तो वो इनके पास आया और कहने लगा कि मुझे भी एक सवाल आज पूछवाना है आपके तोते से। कहा ठीक है पूछो, क्या पूछना है। कहने लगा मुझे इस तोते से पूछ के बताओ कि ये तुम्हारी किस्मत कब खुलेगी। तुम्हें पिछले 10 साल से मैं इसी जगह मिट्टी और खाक में बैठा हुआ लोगों की किस्मतों के हाल बताता देख रहा हूँ, तुम्हारी किस्मत कब खुलेगी। ये सब शिर्क है, अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता।